ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो हरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौरसाहुणं धम्मो वत्थु सहावो कमादिभावो यदसविहो धम्मो चारित्तं खलु धम्मो జీవాణం రక్షణో ధమ్మో దశ లక్షణ ధర్మ ఔర్ ఉస్కా జో హమ్ యహా ఆయోజన్ హువా హై తో హమ్ యహా ధర్మ కర్నే కే లియే యా సమజ్నే కే లియే ఇకట్ఠే హువే హై తో ఆజ్ పంచమీ కా కౌన్ సా ధర్మ హై ఉత్తమ శర్మ ఔర్ షష్ఠి కా ధర్మ ఔర్ ఆప్కా ధర్మ धर्म तिथि में है कि आत्मा में पहले नक्की करना है और धर्म करना है तो जो करना है वो द्रव्य है गुण है के पर्याय है भाई आप समझ सकते हो द्रव्य ने जो अनादि से जिनकी सत्ता है जो मूल द्रव्य जिसको हम कहेंगे सब्सटेंसेस एलिमेंट्स जो है उसको हम द्रव्य कहेंगे जो है जीव द्रव्य है पुद्गल है धर्म अधर्म आकाश काल ये जो छह द्रव्य है और उसका अपना अपना धर्म है उसका वस्तु का स्वभाव उसको हम धर्म देखो धर्म यहाँ अभी हमने जो गाथा पढ़ी उसमें चार प्रकार के धर्म बताए वस्तु का स्वभाव धर्म है जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है उष्णता तो अग्नि को उष्ण होना है क्या स्वभाव क्या किसको कहते हैं जो अनादि से होता है जो द्रव्य में विद्यमान है हमेशा होता है जो एक सदृश रहता है उसमें कोई हीनाधिकता नहीं होती वो नया उत्पन्न नहीं होता उसको कहते वस्तु का स्वभाव धर्म है और वो जो जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट करना उसको भी धर्म कहते हैं यहाँ अभी हमने जो गाथा पढ़ी थी उसमें चार प्रकार के धर्म बताए थे वस्तु का स्वभाव धर्म है उत्तम समाधि दश लक्षण धर्म है देखो धर्म एक ही होता है उसके लक्षण दस है दस प्रकार से उसको यहाँ समझाया जा रहा है परंतु दस लक्षण है परंतु दस प्रकार के धर्म नहीं है एक बात है दो हमने देखे कौन से वस्तु स्वभाव धर्म है दश लक्षण धर्म है महाव्रतादि जो तेरह प्रकार का मुनियों का चारित्र जिसको कहेंगे चारित्र ये धर्म है और चौथा है अहिंसा परमो धर्म जीवों की रक्षा करना वो धर्म है तो इसमें से कौन सा धर्म करना है हमें ये चाहिए पहले नक्की करें हमें करना है ना करना है उसका अर्थ क्या है हमारे पास नहीं है तो आपके पास वस्तु स्वभाव यानी हमारा अपना अपना स्वभाव वो है कि नहीं है पहले नक्की करें कब से है अनादि से किसने बनाया नहीं बनाया उसमें नमी तब तो कोई होगा कि नहीं क्यों नहीं होगा स्वभाव है निमित्त होता वो कार्य में लगता है स्वभाव में कोई निमित्त नहीं है स्वभाव किसको कहेंगे प्रत्येक वस्तु का अपना जो मूल उसके जो गुणधर्म है वो उसका स्वभाव है और वो कब से होता है तो अनादि से विद्यमान है और अनंत काल तक रहता है एक एक सदृश रहता है उसमें कोई हीनाधिकता नहीं होती जैसे हमारा ज्ञान है जो पर्याय है कभी ज्ञान बढ़ता है और कभी वो जैसे क्या हमने पढ़ा था बहुत याद किया था अभी तो स्मरण में नहीं आ रहा है आप बताते तब तो ख्याल में आया था हमने रटा भी था स्कूल में क्या होता था परीक्षा जाते थे परीक्षा देने तो वहां तो कोई भूल जाते थे इतना याद किया हुआ तो ज्ञान भी हीनाधिक होता है पर्याय में वैसा ज्ञान जो स्वभाव है वो स्वभाव में कोई हीनाधिकता होती है क्या भले निगोद वाली एकेंद्रिय की दशा अभी आपने पढ़े नहीं है जीव समास पर वो आएगी बात वो कोई भी एकेंद्रिय समान पर्याय हो या अभी हम पंचेंद्रिय है या सिद्ध भगवान हो जाए तो स्वभाव में कितना अंतर आने वाला है हाँ बेटा बोलो स्वभाव सिद्धों का स्वभाव ज्यादा है हमारा अभी थोड़ा कम है कि नहीं है भारत की अग्नि ज्यादा उष्ण है और नॉर्थ पोल पर थोड़ी ठंडी है ना हम प्रकट नहीं, हम वस्तु स्वभाव धर्म की बात चल, हम स्वभाव की बात चल रही है।
स्वभाव में तो है,
स्वभाव जैसा का वैसा होता है, उसमें कोई हीना दिखता नहीं होता। एक बात वो अनादि का है, दूसरा किसी ने बनाया नहीं, उसको स्वयं सिद्ध कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जड़ है या चेतन है, अपने अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। स्वभाव अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध होता है, किसी ने बनाया नहीं है। जो होता है वो स्वयं पूर्ण होता है। एक बात, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। जैसे आपके घर में आईना, दर्पण, मिरर होगा कि नहीं होगा, आरसा। तो जब आरसा खरीदी करते हैं तो इसमें लिखा होता है इसमें 25 चीजें झलकेगी, एक में लिखता है इसमें 100 चीजें झलकेगी, और इसमें लिखा है 1000 झलकेगी। कौन सा आईना लाएंगे आप? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? रिफ्लेक्टिविटी उसका स्वभाव है, स्वच्छता उसका स्वभाव है, चीजों उसमें झलकना उसका स्वभाव है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो आपका हमारा कोई स्वभाव है कि नहीं है? क्योंकि हम जब मैं या हमारा कहते हैं तो ये मनुष्य शरीर, इसको हम या मैं कहकर उसके आगे की बातें सोचना चालू करते हैं। इसलिए जो सारे कंफ्यूजन और प्रश्न जो उठते हैं, तो मैं मनुष्य हूँ ऐसा समझकर हम सारे प्रश्न उठाते हैं। तो मैं जीव हूँ, आत्मा जिसको कहा है, तो मैं जीव हूँ तो मेरा कुछ स्वभाव है कि नहीं है? क्योंकि शरीर का तो संयोग हुआ है और शरीर इस भाव के लिए है। यहाँ से आगे चले जाएंगे तो शरीर लेके जाएंगे कि नहीं जाएगी साथ में? क्या क्या लेके जाएंगे यहाँ से? हाँ बोलो। हाँ, स्वभाव तो है ही, और कुछ लेके जाएंगे कि नहीं? हाँ, कर्म, कर्म लेके। ये अभी अभ्यास नहीं हुआ है, परंतु जो कारवान शरीर है, तेजस शरीर, वो साथ में चले जाएंगे। यहाँ से पैसा कितना लेके जाएंगे? ये बड़े बड़े व्यापारी बैठे होंगे, या कोई बिजनेसमैन है, या आपके जैसे कोई बड़े ऑफिसर्स बैठे हो, तो इतनी कमाई कर रहे हो, तो उसमें से कितना लेके जाएंगे साथ में? नहीं, अतुल भाई नहीं, एक भी मान लेते हैं तो क्यों कमा रहे? हमारे लिए नहीं, हमारे बीवी बच्चों के ठीक ठाक रखने के लिए। हाँ, क्यों भेजिए? तो मेरे एक आपको एक प्रश्न है, अगर कोई फैसिलिटी होती कि आपने कमाया हुआ धन संपत्ति, सोना चांदी, जो कुछ ले जाने की व्यवस्था किसी फॉर्म में होती, तो क्या करते? तो बच्चों के लिए कितना छोड़ते होते? वो स्वयं कमाएंगे ना, हमने अभी परंतु जो प्रत्येक समय, केवली तो एक एक समय की बात जानते हैं, और प्रत्येक समय में हमारा जो परिणाम है उसके कारण से वहां बंध भी हो रहा है, और जो बंधा हुआ है कर्म वो तो सब साथ में ले जाने वाले हैं। क्योंकि हमारे दिन भर के परिणाम थोड़ी, इस दिन भर हम पूजा करेंगे और स्वाध्याय सुनेंगे, तो प्रति समय जो हमारे परिणाम है, जो कोई क्रोध मान माया लोक के, उसके कारण जो जो कर्म बंधा है, वो सब कर्म तो निमित्त रूप से वहां है, और उसका फल जरूर मिलेगा भविष्य में। क्योंकि हम कहीं जाने की सोचते हैं तो आगे की ऑटोमेटिक व्यवस्था, टैक्सी करके जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कहाँ ठहरना है, सब व्यवस्था देखते हैं। आगे के भव में जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करके निकलते हैं, तो फिर वो सब ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे परिणाम है, जैसी आयु बांधेगी, जो सब कुछ निश्चित है, हमारे सोचने से कुछ नहीं हो जाता। तो हमें ये तो हर समय कर्म का बंध हो रहा है, हर समय। अभी जीव समासों में आप देखेंगे, कभी अकेले हुआ तो कभी देव हुआ, तो कभी राजा हुआ, तो कभी दरिद्री हुआ। तो ये ऐसा अनादि से हम घूम रहे थे, उसमें से छूटने का कोई मार्ग है कि नहीं है? तो कहते हाँ, ये धर्म जो है उससे होगा। तो कहते धर्म तो हर एक के पास है, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना अपना धर्म है। तो कहते वो स्वभाव से कुछ नहीं, वो पर्याय में जब प्रकट होगा तब उससे कार्य होने वाला है। तो वस्तु का स्वभाव हमने देखा, स्वभाव क्या होता है? अनादि अनंत है, वो स्वयं सिद्ध है, और वो क्या है? स्वयं पूर्ण है, अपने में स्वयं पूर्ण है, और वो हीनादि कभी नहीं होता, बदघट उसमें एक सदृश परिणाम होता है उसका। और उस स्वभाव के लक्ष्य से पर्याय में जो प्रकट होता है उसको हम धर्म कहते हैं। और यहाँ जो धर्म की चर्चा भी हम करेंगे, या ये क्योंकि जो प्राथमिक जीवों को ये क्रोध नहीं करने रूप क्षमा को हम धर्म कह रहे हैं। पूजा में भी हमने ऐसा ही कहा, गाली सुनी मन क्रोध नान वगैरह वगैरह, हमने सब बहुत अच्छे से आकर भगवान को सुनाया नहीं? अभी सभी बातें आने वाली है, जब जीव समास खोलेंगे ना तो अनेक बातें आपको समझ में आएगी कि अपना कौन सा जीव समास है वो भी नक्की करेंगे। हम अभी कुछ नहीं बोलते, आप बाद में बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि जो वस्तु का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है ज्ञान, तो हम किसी भी पर्याय में वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होने वाला। हाँ, पर्याय में ही ना दिखता होगी, उस स्वभाव का लक्ष्य करने से जो पर्याय प्रकट होगी, जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, वही धर्म है। वहां से धर्म की शुरुआत होती है, और जब अंतरंग में अधिक स्थिरता होते होते उसको हम कहेंगे चारित्र। चारित्र शरीर की अवस्था नहीं है, चारित्र आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण उसके पर्याय आत्मा में प्रकट हुई है। शरीर और आत्मा जुदी जुदी चीजें हैं, और हमने शरीर की क्रिया को ही धर्म मान लिया है, क्योंकि यही सुनते आए हैं और कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को ठीक ठाक रखो। हमें तो रुचि शरीर संबंधी है और हम बस उसी के ठीक ठाक रखने में, उसी की कोई क्रिया कर दी हमने और हमने धर्म किया मानते हैं। 10 दिन हमने बहुत अच्छा धर्म किया, क्या किया, रोज मंदिर में जाते थे, बहुत अच्छी भाव से पूजा करते थे, हमने उपवास किया, हमने ये किया, हमने धर्म किया। आपने कौन सा धर्म किया, मैं पूछती हूँ, कौन से भाव किए? एक होता है स्वभाव के लक्ष्य से होने वाला शुद्ध भाव, जिसको वितराग भाव कहेंगे, एक होता है शुभ भाव और एक होता है अशुभ भाव। इनमें से ये हम यहाँ आकर क्या कर रहे, अभी अभी वर्तमान में जो हमारे भाव चल रहे, वो कौन सा भाव है इसमें से? शुभ भाव। वो बंध का कारण है क्या, मुक्ति का कारण है, उसको धर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? धर्म किस भाव को कहना है? शुद्ध भाव को धर्म कहना। ये उपचार से यहाँ धर्म कह देते हैं, कह देना अलग बात है, परंतु जो शुभ, हमने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान रखा है, सब विधर्म लाभ लेने आ जाए, ये तो शुभ भाव को धर्म कह देते हैं। वो उपचार है, वो धर्म है नहीं। जो धर्म नहीं वो क्या है? अधर्म है। इतनी तो हिम्मत रखो, जो जैन ने उनको हम अजैन कह देते हैं, और जो धर्म नहीं उसको क्या कहेंगे? अधर्म कहेंगे, क्योंकि एक तो शुद्ध उपयोग होता है या एक अशुद्ध उपयोग होता है, और अशुद्ध उपयोग के दो भेद होते हैं, पुण्य और पाप। हम अनादि से क्या करते आए, या तो पुण्य करते आए या पाप करते आए, उसका बंध होते ही रहता है, परंतु उसका जो मूल कारण है मिथ्यात्व को, उसका आता पता ही नहीं। मिथ्यात्व तो क्या चीज होती है? लोग कहते हैं हमको, हमने मिथ्यात्व को त्याग कर दिया, इन्हें क्या किया कि हमने खुदाई वादेन को नमस्कार करना बंद किया, पर उससे क्या होगा? वो तो केवल हमने देव संबंधी, परंतु सच्चे देव क्या है उसकी मान्यता मालूम नहीं, केवल हमने उनको नमस्कार करने का नियम लिया, परंतु देव का जीव समाज गुणस्थान क्या, तो हमने उनको नमस्कार भी नहीं किया सच्चा। उनकी सर्वज्ञता केवल ज्ञान क्या है, अगर इसका भी निर्णय हो जाए तो उसी समय जीव को समय दर्शन हो जाए, इतनी सरलता है, परंतु हमने कभी इसका विचार नहीं किया है। और हम धर्म करना चाहते हैं, मैं भी बचपन में इसी को धर्म मानते कि हम रोज मंदिर जाते हैं, हमने इतने उपवास किए, हमने इतना एकासन कर दिए और हमने पूजा विधान सब कर दिए, हमने बहुत अच्छा धर्म, और ये लोग धार्मिक है सब समाज में भी कहते हैं, पर सच्चा धर्म कब शुरू होगा? जो हमारा वस्तु का, हमारा जो स्वभाव है, पहले उसका तो ज्ञान होना चाहिए कि स्वभाव क्या है, कैसा है। इसमें सारे जो सिद्धांत बताए हमारे भगवान ने, जो सारे सिद्धांत बताए हैं, क्योंकि हमको धर्म कहना करना है तो वो पराधीन होगा कि स्वाधीन होगा, पहले ये तो नक्की करो। हम अकेले बैठे हैं और हमको क्षमा करनी है, किसको किसको करेंगे या किसकी मांगेंगे, बोलो? क्षमा करने के लिए सामने कोई जीव होना चाहिए, और क्षमा मांगने के लिए, तो क्षमा मांगना धर्म है कि क्षमा करना धर्म है? हाँ बोलो, करना। तो क्षमा करना ये भी शुभ भाव है, क्षमा मांगना ये भी शुभ भाव है, तो धर्म कहाँ आया? तो वस्तु स्वभाव धर्म है, वितराग हमारा स्वभाव है। देखो भगवान में जो वितरागी और सर्वज्ञ भगवान है, ये हमने नक्की किया है, तो वितरागता और सर्वज्ञता कहाँ से प्रकट हुई, पहले ये नक्की करना चाहिए। वो पर्याय है ना, उनकी भगवान की जो पर्याय है, वो पर्याय है तो वहां कोई गुण होगे, तो वो गुण जो प्रकट होते हैं पर्याय ने अवस्था, जो वस्तु में है वही पर्याय में प्रकट होता है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आता। द्रव्य जो अखंड है, अभी यहाँ द्रव्य गुण पर्याय का कितना अभ्यास है मालूम नहीं, वहां से ही हम एक्चुअली शुरुआत करते हैं, परंतु हम थोड़े आगे के एडवांस विषय यहाँ ले रहे हैं। तो द्रव्य है वो अपना द्रव्य क्षेत्र, अपना उसका विस्तार है, उसकी अपनी पर्याय निरंतर अपने से होती है, उसके वो गुण तो अनादि से है ही है। तो उसके जो कोई पर्याय हो उसी द्रव्य के क्षेत्र में लिमिटेड है, जीव के पर्याय कहीं जीव के बाहर नहीं जाएगी। वो केवल ज्ञानी पूरे विश्व को जानते हैं अनादि से अनंत काल तक, तो उनका केवल ज्ञान वहां तक पहुंचता होगा कि नहीं होगा, आकाश के अंत तक? हाँ भाई बोलो। पहुंचता हो, क्या क्या निकलता हो, किरणें कुछ केवल ज्ञान की निकलती होगी, क्या होता होगा? वो कहाँ तक लिमिटेड है? केवल ज्ञान कितना बड़ा होगा? केवल ज्ञान कितना बड़ा है? असंख्या प्रदर्शित है। आप कहेंगे लोकाकाश पुराण, कोई कहेंगे लोकालोक, कितना नक्की तो करना पड़ेगा ना। आप पीछे कोई बताना चाहते हैं? यहाँ तो हमें उत्तर मिल गया यहाँ से, आप कोई कहना चाहते पीछे से? हाँ, जीव प्रमाण, जीव जितने क्षेत्र में, जैसे आदिनाथ भगवान की जितनी हाइट अवधारणा थी उतना ही उनका केवल ज्ञान। आपका भी मति शुद्ध ज्ञान कितना क्षेत्र में विराजमान है? जितने आपकी जो अवधारणा होगी 5-6 फीट की उतनी है ना, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो उसका ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी है, उसकी पर्याय प्रत्येक वो असंख्यात प्रदेशी है उसी क्षेत्र में। तो जीव का चारित्र कहाँ होगा? चारित्र में, अंतरंग में स्थिरता, उसको चारित्र कहते हैं। किसी शरीर का वो बाह्य शरीर की अवस्था उसके अनुरूप होती है, परंतु वो चारित्र नहीं है। चारित्र ने चरना, रमना, अंतरंग में स्थिर होना, वो धर्म है। तो यहाँ क्षमा धर्म की जब चर्चा करते हैं, तो हमने हर साल में जब से हम पैदा हुए और मंदिर जी के साथ मंदिर में जाते थे मम्मी के, तब से हमने दशलक्षण धर्म पर सब व्याख्यान सुने हैं। बस आज के दिन सबको क्षमा करना, कौन पंचमी के दिन क्षमा कहा उसका, पंचमी का धर्म है, हमारा कोई धर्म नहीं है, है ना? यानी किसी पर क्रोध नहीं करना, उसने गलत, ऐसा आता है कथन, आता है शास्त्र में आता है, परंतु उसका सही अर्थ क्या, धर्म कब होगा? ये तो क्रोध नहीं करना रूप, यानी अभी क्रोध तो हो रहा है अंदर, तो हमको अनिष्टता लग रही है, पर क्या है? नहीं, आज शांति रखना है, क्योंकि आज क्रोध नहीं करना है, आज सबको क्षमा कर देना है। यानी जो ऑलरेडी अगर क्रोध पैदा हुआ है तो शांति कहाँ हुई? किसी के प्रति उसने हमारा कोई अपराध किया, सजा किया, तो हमारे प्रति तो उसके प्रति तो अनिष्टता होगी, इसने मेरा कुछ गलत किया है, उस समय तो क्षमा हुई नहीं है। फिर दूसरे पर्याय में हम सोचते हैं, नहीं आज ये तो सबको हम क्षमा कर देंगे, किसी के प्रति हमको कोई क्रोध रखना नहीं है, क्षमा भाव रखना है, तो हर साल हम क्षमा करते हैं। तो ऐसे क्षमा धर्म जैसे आज का जो हो रहा है दशलक्षण धर्म, फिर नेक्स्ट ईयर कब आएगा भाई? कब आएगा नेक्स्ट? हाँ, अभी ये दशलक्षण हो गया, दूसरा दशलक्षण कब आने वाला है? हाँ, एक साल के बाद, हाँ मार्च के महीने में, और चैत्र में भी आएगा। कल सुना होगा ना? सुना है, अच्छा कल हो गया। तो आपको किसी ने 10 साल पहले इंसल्ट किया आपका, उसके प्रति आप क्षमा रूप हो अभी भी, क्या क्रोध है कभी भी उसकी याद आती तो क्या हो जाता है? याद आती है, तो आपने लास्ट टाइम में उसको क्षमा नहीं की थी क्या? उस दिन फिर केवल क्षमा की थी, बाद में फिर वो क्रोध चालू कर दिया, हुआ क्या? वो 10 साल पहले का इंसल्ट अभी भी यहाँ चुभ रहा है। कोई हमको कोई ऐसा गलत वचन बोलता है तो वो कितना चुभता है, और आचार्य बार बार कह रहे हैं, भगवान आत्मा तू सर्वज्ञ स्वभावी है, वितरागी स्वभावी, वो कितना चुभता है या कितना अंदर जाता है, कितनी अपनी महिमा आती, वो महिमा नहीं आती। पर किसी ने अपने को कोई कोई भी फॉर्म में इंसल्ट किया है, वो कितने बार याद आता है, और उसके प्रति अभी भी वो क्रोध का भाव, उसके प्रति जब तक क्षमा रूप नहीं प्रवर्तते हैं तब तक वो अनंतानुबंधी वाला क्रोध चल रहा है। क्षमा रूप हुए कहाँ हम? तो जीव का स्वभाव वितरागी और सर्वज्ञ है, और उस स्वभाव के लक्ष्य से पर्याय में वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट होती है। अरियंतों को भी जी वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई है, वो बाहर से नहीं आई है, स्वभाव के लक्ष्य से वो पर्याय में प्रकट हुई, अवस्था में प्रकट हुई। तो तो जो स्वभाव के लक्ष्य से जो पर्याय प्रकट होती है उसको कहते हैं हमें ये धर्म करना चाहिए, क्योंकि जो स्वभाव है उसको तो कोई करने धरने का सवाल ही नहीं, तो है ही। अब जो पर्याय में जो नहीं है तो हमने तो केवल वो बस क्षमा रूप जो शुभ भाव है उतने करने तक अपनी ये दश लक्षण का स्वरूप मान लिया। उत्तम शब्द उसके पीछे है तो वहाँ वो वितरकता के साथ वाली क्षमा है। हाँ, जिसने इतनी वितरकता प्राप्त की है उसके पर्याय में ऐसे तीव्र क्रोध रूप परिणाम भी नहीं होंगे। तो यहाँ क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा उसको कहेंगे क्षमा वाला धर्म। यहाँ तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अनिष्टता लगती है, परंतु क्या अभी बाहर से तो हमें कुछ क्षमा दिखानी है या करनी है, जो कुछ है वो शुभ भाव है जो कहेंगे वो थोड़ा शांति रखी उसने, ज्यादा वो आकुलित नहीं हुआ या जो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्योंकि शास्त्र में तो ऐसे वर्णन करते भी ऐसे कि सामने वाले ने गाली दी, किसको देख कर दी, उसको क्या दिखा, शरीर दिखा, जीव दिखता है उसको, क्योंकि जीव द्रव्य कैसा है तो अरूपी है, किसी को दिखता नहीं है क्योंकि तो इंद्रियों से जानने की चीज ही नहीं है। लोग हमको पूछते हैं बार बार आत्मा 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 करते हैं, किसी ने देखा है काला पीला नीला कुछ होता ना, अगर आत्मा नाम की चीज होती तो दिखाई देती कि नहीं देती, ऐसे पूछते है एजुकेटेड लोग पूछते है, है ना, जैन ही पूछते हैं हमको, क्योंकि अजैन तो सुन लेते हैं शांति से, जैन हमको जरा क्योंकि उनको लगता है हम सर्वज्ञ है पर्याय में, स्वभाव की बात नहीं तो क्या कहते हैं, तो ये जो हमें स्वभाव जैसी पर्याय प्रकट होना उसके लक्ष्य से उसकी सन्मुखता से होगे, और जब ये पर्याय प्रकट होगी तो अतीन्द्रिय आनंद उसी के साथ उसको उत्पन्न होता है। तो जब तक ऐसे समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय प्रकट हुई नहीं है तब तक उसको वितरकता के ने धर्म की शुरुआत नहीं है। ये जो धर्म है वितरकता है ये हम आप कषायों से परिचित है, इसलिए कषायों के अभाव स्वरूप नास्ति से कथन होता है। किसी भी चीज को हम जानते हैं उसमें अस्ति नास्ति जिसको हम विधि निषेध कहते वो होता ही है। जैसे हमने आपको पूछा कि ये कौन से कलर की चीज है, बोलो काली, तो काली है कहते ही या जानते ही, वो पीली नहीं है, नीली नहीं है, सफेद नहीं, अभी कितने रंग ले लो, ये नहीं है उसी ज्ञान में वो उसी समय मौजूद है। कथन में हम पहले कहेंगे ये काली है और फिर सफेद नहीं, पीली नहीं, लाल नहीं, हरी नहीं, ये सब हम कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, नास्ति से और अस्थि से। अस्थि से कहना या जानना उसको कहेंगे विधि, और नास्ति से उसी चीज का कथन करना उसको कहेंगे निषेध। तो ज्ञान ये ऐसा ही होता है विधि निषेधा, हम हर चीज में जो बोलते हैं जानते हैं उसमें ये बात होती ही है। जो शास्त्रीय भाषा और शब्द लगाएंगे तो हमें लगता है क्या अटपटी बातें कर रहे हैं, तो हम जब अपने ही स्वभाव की बात करते हैं तो हम ज्ञान स्वरूपी है, चैतन्य में ज्ञान आनंद का मैं घनपिंड हूँ, ये अस्थि से कथन हुआ। परंतु आज तक हमने क्या माना है, अरे ये मनुष्य शरीर मैं हूँ, तो ये शरीर मैं नहीं है, ऐसा वहां कथन आता है। हमने क्या माना, अरे हम पुण्य या पाप परिणाम करते रहते, शुभ भाव या अशुभ भाव, देवगुरु शास्त्र के प्रति विनय भाव अगर ये शुभ भाव होगा या संसार के अन्य धन संपत्ति या घर के जो कुछ घर गृहस्थी संबंधी हमें उनके प्रति जो राग द्वेष होते हैं वो अशुभ भाव होगा, तो कहते ये शुभ और अशुभ भाव, और उस रूप मैं हूँ, उससे भिन्न उससे जानने वाला मैं हूँ, ऐसे उसने उसकी जुदाई उसकी भिन्नता उसका जो विभक्तपना उसको स्पष्टपने अनुभव में नहीं आया है, तो उसने अपने को क्या माना, इसको सबको मिलकर कहेंगे राग। एक तो शरीर रूप मैं हूँ मान लिया, या राग यानी कषाय रूप में, राग यानी वो मराठी वाला राग नहीं, क्रोध वाला राग वो नहीं, राग यानी अनुराग, राग यानी शुभ राग या अशुभ राग, सबको मिलकर एक राग शब्द आता है शास्त्र में, उसमें वो क्रोध मान माया लोभ सब समझना, पुण्य भाव को भी और पाप भाव को भी राग कहेंगे। तो ये राग से मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप जुदा है, उसने कभी जाना नहीं अनुभवा नहीं, तो उसने मैं तो या तो शरीर में स्थापित किया या पुण्य पाप के शुभ भाव होते, देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना दयालु हूँ, इसी को उसने अपना स्वरूप मान लिया। परंतु मेरा स्वरूप मैं जीव हूँ, तो मैं अपने ज्ञान दर्शन गुणों का पिंड हूँ, ऐसा उसने कभी पहले तो आगम से जानेगा, उस पर निर्णय करेगा, मैं अभी तक ऐसा मानता था, अभी ये बात सत्य सच्ची बात सामने आई है तो इसमें से मैं कौन हूँ पहले ये निर्णय हुए बिना धर्म तो मुझे करना है कि शरीर को करना है। मैं जीव हूँ क्या शरीर हूँ ये नक्की करो ना पहले। तो मेरा ये प्रश्न है कौन मरता है, जीव मरता है कि शरीर मरता है, पीछे कोई कहेंगे? शरीर मरता है। शरीर जिंदा कब था बेटा? शरीर तो जड़ जड़ परमाणुओं का पिंड है, उसमें कोई जान बीन कुछ नहीं रहती है। यहाँ जो जानने देखने का कार्य तो मैं जीव हूँ वो करे। जीव नाम क्यों पड़ा मालूम है? शास्त्र में लिखा है जो अनादि से जीता आ रहा है, जो वर्तमान में जी रहा है और जो अनंत काल तक जीता रहेगा उसका नाम है जीव। इसको कभी मरता ही नहीं है, वो जीव 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 ही रहता है। और हम यहाँ ऐसे है भोले या बुद्धू या मूर्ख कि मरण के भय से मरे जा रहे हैं, नहीं समझे? डॉक्टर के पास क्यों दौड़ते हम? मरण के भय से। कौन? जीव। और यहाँ तो कहते हैं अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरोपामि देशवा। अभी धूप दशमी में कितना धूप जलाएंगे सब जीवों को मारने के लिए, है ना? और फिर क्या कहते हैं अभी नौबत आ जाएगी तो आयु कर्म को छोड़ना है कि रख के जाना है सिद्ध भगवान होना? आयु कर्म का काम क्या है मालूम है? जीव को उस पर्याय में लॉकअप में रखना जैसे कारावास में रखना, ये उसका काम है। मनुष्य पर्याय से छूटने नहीं देता आयु कर्म। और यहाँ बीमारी हुई तो क्या होता है? अरे मैं मर न जाऊं तो कहाँ दौड़ता है? डॉक्टर के पास। जैसे कोई कारावास है और वो कारावास की मान लेते भूकंप आया और उसकी दीवार गिर गई तो क्या करेंगे सारे कैदी? भाग जाएंगे, पहले दौड़ लगाएंगे बाहर। और हम क्या करते हैं? हम भी भागते हैं। क्यों? अरे ये कारावास की दीवार दुरुस्त करने के लिए। डॉक्टर के पास चले जाएंगे हाँ, सब रिप्लेस करेंगे, हार्ट रिप्लेस, किडनी रिप्लेस, लिवर रिप्लेस, हाँ अभी ये जॉइंट वगैरह सब वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले थे, अभी सब स्टील के सहनन वाले हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आज के जमाने में भेद विज्ञान करना बहुत आसान है, जो रिप्लेस कर सकते वो मैं नहीं हूँ। अरे स्किन भी सारी रिप्लेस होती है, ब्लड पूरा ब्लड हो, बच्चों को जॉन्डिस होते तो पूरा ब्लड निकाल के दूसरा ब्लड उसको ट्रांसफर। फिर भी हम क्या ये डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, बीमारी के कारण से कोई नहीं जाता, डर के कारण सब जाते। मैंने भी 30 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस की है, मुझे सब मालूम है क्या 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 करें। तो ये बात कहाँ से निकली है? सब शरीर से मैं भिन्न हूँ, पहले मैं नक्की करते हैं तो बाकी आगे का सारा प्रोसेस बिल्कुल आसान है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, कब से? तो अनादि से है। और प्रत्येक समय में परिणमन करना उसका स्वभाव है, कौन सा गुण है? द्रव्य गुण प्रत्येक समय, और अपना अपना कार्य करता है वस्तु, यानी द्रव्य इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उसको अपना कार्य करने के लिए किसी पर के सामने नहीं देखना है। और उसकी प्रत्येक पर्याय भी वो सुनिश्चित कैसे वो शाम को देखेंगे हम क्रमबद्ध पर्याय में। ये सारे सिद्धांतों का जब हम सही निर्णय करते हैं तो नेचुरली अपने, क्योंकि मैं कौन हूँ समझते हैं, अपने ओर देखने का उसको रुचि जगेगी। उसको शरीर को मैं मानता है तो सबसे पहले सुबह दर्शन किसके करता है? अपने। कहाँ? आईने में। ठीक ठाक है कि नहीं बराबर देखता है। और यहाँ कहीं वो आईने में दिखा कि गाल पर काला है तो आईना पूछता है बराबर नहीं, क्या करता है वो बराबर यहाँ पूछता है। फिर ऐसे हम यहाँ भगवान के पास दर्शन करने आते हैं, क्यों? वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। और फिर क्या करते हैं? भगवान को हम अभिषेक किया, पूछा या अंगुलियों सब लगाया, अच्छा तरह से नमस्कार करते हैं। अरे उनके दर्शन इसलिए करते हैं कि हमें अपने स्वभाव का एहसास हो जाए, तभी हमने दर्शन किए। शास्त्र में आता है नमस्कार कब शुरू होता है, भगवान का नमस्कार कहाँ कब होगा है? कि अपने वितरागी सर्वज्ञ स्वरूपी अपने भगवान के दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, तब कहेंगे कि हमने भगवान के दर्शन किए तब नमस्कार कर किया। डबला पुस्तक में लिखा है ऐसा, ये नमस्कार के भी असंख्यात प्रकार होते हैं। और वो नमस्कार कब शुरुआत होता है? जिस समय जीव को सम्य दर्शन में अपना आत्मा का अनुभव हुआ तब उसने भगवान को नमस्कार किया, उसको कहेंगे जिनेन्द्र का दर्शन किया। जितनी अंतरंग में स्थिरता होगी वो वैसा उसका नमस्कार भी, जिसको हम कहेंगे गहराई से उसका नमस्कार होगा। और यही विधि है कि अपने स्वभाव के ही, जिसको आश्रय करना कहते हैं, उसी के आश्रय से यानी उसी में स्थिर होने से, जिनको जितनी स्थिरता है वो स्थिरता को ही चारित्र कहते हैं और वो चारित्र ही धर्म है। प्रवचन सार में भी लिखा है चारित्र फल धर्म, और चारित्र क्या है तो मोह और क्षोभ रहित जीव का परिणाम, अंतरंग में स्थिरता वो परिणाम है और वो धर्म है। और उस धर्म की हमको यहाँ पहचान होनी चाहिए। यहाँ हम 10 दिन में 10 अलग अलग पद्धति से वो क्षमा मार्दव आर्जो जो बताएंगे, क्योंकि हम क्रोध आदि से परिचित है तो यहाँ हमने कहा अस्थि से कहेंगे तो क्षमा धर्म जो आत्मा का अनादि अनंत स्वभाव है, और हम कहेंगे वो पर्याय में जो प्रकट करना है तो वो स्वभाव जो अनादि अनंत है वो भी कैसा है, तो क्रोध के अभाव रूपी वीतराग यानी वो अराग स्वरूप ही है, और पर्याय में कैसे प्रकट करना है तो पर्याय में अभी क्रोध है तो नास्ति से क्या कहेंगे हम, क्रोध का अभाव वो क्षमा है। परंतु हमने क्रोध आया तो उस पर्याय में था, वो एक समय में स्वयं एक समय की पर्याय एक समय में विनिष्ठ होती है, आपने क्या उसका अभाव किया। नेक्स्ट पर्याय में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ तो हम कहेंगे उसको अभाव किया। ये शास्त्र की कथन पद्धति है, शास्त्र को कैसा समझना कैसा जानना ये उसकी पद्धति होती है। तो इस पर्याय में क्रोध है, नेक्स्ट पर्याय में आत्मा के लक्ष्य से क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वहां कहेंगे क्रोध का अभाव किया। पर क्रोध के लक्ष्य से क्रोध का अभाव कभी नहीं होगा, क्षमा स्वभावी जो वितराग स्वभाव है उसके आश्रय से पर्याय में क्षमा धर्म प्रकट होगा, वितरागता की शुरुआत होगी, सम्यक दर्शन होगा तो ये क्षमा धर्म पर्याय में प्रकट हुआ। ऐसा जो सम्यक दर्शन सहित अधिक आत्म स्थिरता होती है ऐसे मुनि राजों को जो क्षमा धर्म पर्याय में प्रकट हुआ है उसको उत्तम क्षमा कहते हैं। उत्तम शब्द है अधिकता के लिए बताया है, भगवान तो परिपूर्ण, जो जितने वितरागता है पूर्ण पर्याय में प्रकट हुई है। मुनि राजों को अति प्रचुर संवेदन है, स्थिरता बहुत है, इसलिए उसको चारित्र रूप जो है वितरागता है, 3 कषाय चोपड़ी के जो हम अनुदय पूर्वक अभाव पूर्वक कहेंगे तो उस वितरागता का नाम है यहाँ उसका लक्षण। वितरागता तो एक ही होती है, उसके लक्षण 10 प्रकार के बताते हैं। यहाँ कहेंगे क्रोध के अभाव रूप उसको क्षमा कहेंगे, मान के अभाव रूप उसको क्षमा, इसलिए ये शब्द हम देखेंगे शास्त्र में तो ऐसा ही उसका वर्णन आता है, तो यहाँ तो ऐसे ही बताए। और ये अहिंसा परमो धर्म ऐसा भी आपने सुना होगा, तो कौन सा वाला करना है, दया धर्म का मूल है, कौन सी दया, स्व दया से शुरुआत होती है, हम तो पर दया को ही दया कहते हैं परंतु ये दया अपने से शुरुआत होती है, तो स्व दया के लिए पहले स्व कौन हो इसका तो निर्णय करना चाहिए। स्व को निर्णय नहीं हुआ और पर का ही उपचार करते रहे तो वो दया शुरुआत भी नहीं होगी। और ये हमारी आपकी बात नहीं, मुनियों ने लिख के रखा है, कुशा सिद्धि उपाय में क्या लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने, आत्मा में रागादि ने कषाय है, क्रोध मान माया लोभ शुभ अशुभ कोई भी इसकी उत्पत्ति होना, किसी जीव को बचाऊं ऐसा भाव उत्पन्न होना ये आत्मा की हिंसा है, तो वहाँ अपनी दया पड़ी नहीं तो हमने परजीव को बचाया, उसको मरने नहीं दिया तो ये हमने धर्म किया ऐसा लगता है, तो ये अहिंसा हुई। अहिंसा महाव्रत के हमारे धारी मुनिराज होते हैं, तो परंतु ये अहिंसा किसको में, अहिंसा परमो धर्म जो कहा है, तो जो ऐसा हमारा जो राग रूप हिंसा जिसके नहीं होती है, ऐसे जो मुनिराज अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं उनके वो अहिंसा धर्म पलता है, उसको कहा अहिंसा परमो धर्म। और ये चारों हमने जो अलग अलग, एक तो वस्तु स्वभाव धर्म है और बाकी जो मिलता है ना कि अहिंसा परमो धर्म चारित्र फल धर्म, ये सबका अर्थ एक ही है, जो पर्याय में जो धर्म प्रकट करना है जो करना है वो पर्याय होती है, और जो अनादि से वो तो है ही, उसमें तो कुछ करने धरने की बात ही नहीं है, तो वो विद्यमान है अभी है कि नहीं है, और जानने का कार्य आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने सामने देखा तो हमें वृक्ष दिखे, ये सब आपने मंडपों की ये भगवान की मूर्ति सब हमने देखा, कितना प्रयत्न किया क्या क्या किया, अरे जानने का स्वभाव ये वो स्वयं वो प्रकट हो ही रहा है, तो हमारा वीतराग और सर्वज्ञ स्वभाव है और वो तो प्रकट होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, पर्याय में जो हमने उल्टी मान्यता रखी रखी, क्या ये शरीर मैं हूँ ये मान के रखा है, ये क्रोध मान माया रोग राग हो गए मैं हूँ ये हमने मान रखा है, मैं बड़का कर सकता हूँ ये हमने मान रखा है, मैं सोचू वो कर दिखाता हूँ ये हमने मान के रखा है, ये जो मिथ्या मान्यता है उसको छोड़ दे तो स्वभाव प्रकट होने के लिए लाला ही पढ़ाएगा। आपने एक स्प्रिंग दाब दिए तो दब गए, अब हमने क्या किया उसको भी पहले जैसा किया करना है तो छोड़ देने के बाद उसको ऐसा खींचना पड़ता है, क्या करते हैं अपने आप हो जाता है, स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं होने के लिए कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हो जाता है। हमने उसको दाब के रखा है कौन से उल्टी मान्यताओं से, कौन सी उल्टी मान्यता, मैं शरीर रूप हूँ राग रूप हूँ मैं परद्रव्य का परिणमन कर सकता हूँ, ये सब खोटी मान्यता, ये सब हमने कल्पनाओं में मान रखा है और मान रखा है कि धर्म करना है, किससे होगा शुभ भाव करेंगे तो उससे धर्म होगा, ये हमारी उल्टी मान्यताएं है। उसने तो चार उपवास किए मैं कुछ नहीं कर सकता, एक दूसरे को देखकर किसी क्रिया में हमने धर्म मान के रखा है और ये मान्यता छोड़ दो, ये तो धर्म अपने आप प्रकट होने वाला है, अपने स्वभाव का लक्ष्य करने से ही धर्म होगा बाहर में। हाँ जो ऐसी सोचता है जो इस तरह से इस पर विचार करता है तो उसके अन्य जीवों के प्रति सहज रूप से करुणा भाव होते हैं, उसके अन्य किसी ने उसका कोई अपराध भी किया हो, किसी ने उसकी गाली सुन दी या कोई अन्य अन्य अभी हम सोच सकते कितने अपराध होते हैं, परंतु उस संबंध में उसके कोई कषाय ही उत्पन्न नहीं होते, किस आधार से, क्योंकि उसको कोई आधार होना चाहिए तभी ये बातें पर्याय में प्रकट हुई, नहीं तो जबरदस्ती कितना करेगा, क्रोध नहीं करना क्रोध नहीं करना क्रोध नहीं करता, क्रोध का कंट्रोलर होना यही मिथ्यात्व है बड़ा, क्योंकि जो विभाव भाव है अगर उसका वो कंट्रोलर है वो कर, मैं कहती हूँ क्रोध को कम कर रहा है ना, कोई ऐसा उपदेश क्यों नहीं कहता क्रोध करो ही मत वितरागी हो जाओ, क्रोध को कम कर आप कम कर सकते हो बिल्कुल मत करो, और क्रोध के लिए केवल उपदेश है लोग मत करो ऐसा कोई नहीं कहता, धन बढ़ाने के पीछे मत लगो ऐसा कोई नहीं कहता है ना, एक क्रोध ही पाप लगता है ना, अन्य चीजें तो लगते नहीं, मायाचारी तो कितनी हो रहे, अरे मायाचारी के बिना झूठ बोले बिना कोई धंधा होता है क्या, ऐसा भी कहते हैं मिलते हैं कितने लोग, यानी हाँ परिग्रह पाप नहीं लगता है परिग्रह, क्योंकि हमको मरता भी उसी की आती है, कहीं देखते अरे वहां ऐसा होना चाहिए, पर भगवान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा ही बनना है, ये तो हम शास्त्र में भी जो आचार्यों ने देखो उनके तो मार्ग मिल गया था, अंतर में स्थिरता तो होती थी पर जब नहीं होती तो क्या विकल्प है कि ऐसे शास्त्रों की रचना थी, आचार्यों के हमारे पर महान उपकार है और वो उनके उपकार में आज तक ये परंपरा हमारे तक ये ग्रंथ उपलब्ध हुए है, परंतु तो वे छपाने से और छपने को पैसा देने से ये नहीं होने वाला, वो स्वयं पढ़ेंगे उसका मर्म समझेंगे, क्योंकि वहां तो शब्द तो वही के वही हो गए, उसके पीछे का रहस्य हमको ढूंढना है, क्योंकि वहां तो कथनी होगी निमित्त से परंतु कार्य तो अपने में होता है, वहां कहेंगे कि मंदिर में नहीं आते मंदिर में आना दर्शन करना, जो नहीं करता है उसको कहेंगे रोज भगवान के तो दर्शन करो इतने उपवास का फल मिल जाएगा, आचार्य भी कभी कभी कषाय उत्पन्न करा के जीवों को धर्म के प्रति लगाना चाहते, यदि रोज मंदिर में आना तो फिर मंदिर में आना खाली भगवान के दर्शन न करना शास्त्र भी सुनना ऐसा भी कहेंगे, और फिर सालों से जो अभ्यास कर रहे हैं खाली शास्त्र सुनने से कुछ नहीं होंगे, तो शास्त्र में जो लिखा है जो बताया है उसका लक्ष्य करे तो अपना कल्याण होगा, तो सामने के जीव कैसे है उसको उपदेश भी वैसा दिया जाए, क्योंकि वो तो अनेक प्रकार की भाषा चार अनुयोग की भाषा भी अलग अलग होती है, और हमें तो ऐसा है कि जिस किसी भी पद्धति से हमें धर्म कैसे प्रकट हो वो, क्योंकि मैंने कहा ना एक बार मैं निश्चित किया तो अपने लिए क्या इष्ट है अनिष्ट है हम सोच सकते हैं, और केवल हमने अपने को मनुष्य मान के रखा तो उसी के आधार से शरीर को क्या अनुकूल है प्रतिकूल है उसी के लिए हम राग द्वेष की परंपरा चालू रखते, तो इसके लिए यहाँ हमें यहाँ जो बताया है ये मेरे हाथ में संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ। संसार की दुख परंपरा से क्योंकि संसार यानी चारों गति में जो संसरण यानी जन्म मरण हो रहा है, ये जो दुख की परंपरा, दुख ही दुख ही दुख, तो दुख किस बात का है मुझे प्रश्न है बहुत, क्योंकि हम दुख को दूर करने के लिए सब प्रयत्न करते हैं, तो हमें दुख किस चीज का है। बच्चे हमें नहीं सुनते इसलिए दुख है कि हमारे पैसे पैसा कम है इसलिए दुख है कि हमें कोई नहीं, हमारे बच्चे छोड़कर चली गई शादी करके, हम अभी बूढ़े दो ही रहेगी, इसके बाद का दुख है क्या है कि अभी बहू लानी है मगर कोई अपनी उलानुरूप नहीं मिलती है अपनी संस्कारी लड़की, इसलिए दुख है क्यों, तो किस बात का है बोलो। ममता, हाँ मान्यता, हाँ हाँ, अपने राग द्वेष का ही हमें दुख है। किसी जीव को किसी संयोग ने आज तक दुखी बनाया ही नहीं है, अपने राग द्वेष, और राग द्वेष क्यों होता है तो मोह से होता है, जिसको मोह है नहीं मिथ्या तो कही उल्टी मान्यता, और उसके पांडित्यता के कारण राग द्वेष होते रहते हैं। रागादि प्रकट ये दुख दे, प्रकट में दुख देने वाले रागादि कहाँ लिखा भैया, ये सब इनको याद है, उनको उस कार्य सौंप दिया है ना याद वगैरह करने का, क्योंकि हम तो उनकी अनुकूलता रखने में जुड़ गए हैं, पैसा वैसा ठीक ठाक करने में है ना, धर्म भी वो ही करेंगे, मोक्ष भी चले जाना उनके लिए, हाँ उनको क्या कोई भी मिलेगी और दूसरी नहीं। तो संसार की दुख परंपरा से हटाकर जो निराकुल सुख शांति देने वाला है उसे धर्म कहते हैं। शुभ भाव भी आकुलता देने वाला है क्योंकि वो तो राग है ना कषाय। धर्म नाम वस्तु के स्वभाव का है, वस्तु यानी द्रव्य, हम जीव द्रव्य है तो हम अभी स्वभाववान चीज है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव वाला होता है, जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव है, ये राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं, वो विभाव है, विपरीत भाव है, उल्टा भाव है, हमारा जैसा वितराग स्वभाव है वैसा नहीं, वो उल्टा उल्टा हो रहा है, वही उसके लिए हितकारी है। जब वस्तु में किसी अन्य पदार्थ का मेल होता है तब वह विकृत और मलन हो जाती है। क्या कहते हैं, पानी पीना है और उसमें अच्छा बिल्कुल शुद्ध दूध मिलाया जाए तो निर्मल पानी कहेंगे क्या, अरे बिल्कुल दोनों शुद्ध है ना, किसी की मिलावट होती है तो विकृत मलिन हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग द्वेष निराकुल अवस्था वो उसका स्वभाव है, और कर्म के संयोग से, देखो पानी का स्वभाव शीतल है और अग्नि के संयोग में वो स्वयं गर्म होती, पर उसका कायमी स्वभाव कैसा है, शीतल है। स्फटिक आपने देखा होगा या सुना होगा, स्फटिक कैसा है, निर्मल है, परंतु उसके बाद में बाजू में कोई एक लाल रंग का फूल डॉट कुछ भी रख दो तो पूरी झाई उसमें आती है, लाल है, नीली है, पीली है, तो उस समय भी उसका वो स्वभाव है निर्मल स्वभाव, वो क्या चला गया क्या, वही पर मौजूद है, पर उस संयोग में उसको वैसा स्वयं परिणमन कर रहा है, वो लाल फूल उसको लाल नहीं बना रहा है, वो स्फटिक स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है, नहीं तो बाजू में वो लोहे के बाजू में रखो वो भी वैसा होना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है, शुद्ध निर्मल ज्ञान दर्शन आनंदमयी, और कर्म का जो पुराना बांधा हुआ उसके उदय में उसके संयोग में वो स्वयं राग द्वेष हो रहा है, कर्म उसको नहीं बना रहा है, कर्म जीव को जबरदस्ती कुछ नहीं करता, निमित्त से कथन आता है कर्म का उदय हुआ और जीव ने उसको ऐसा किया, परंतु वो जीव उस रूप परिणमित हो रहा है, तो ये जो जीव अपना लक्ष्य करता है तो वो तो कर्म की बहुत बड़ी थियरी है, वो तो अपने आप जो कुछ बातें हो जाती है, तो जीव का कायमी स्वभाव उस अवस्था में भी निर्मल है। अभी हमारे पर्याय में राग द्वेष होने पर भी, वो स्फटिक लाल पीला होने पर भी उसके निर्मलता वो नष्ट नहीं हुआ, स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, पर्याय में वैसा है, वैसे हमारे पर्याय में अभी वर्तमान में राग द्वेष होने पर भी हमारा स्वभाव जैसा का वैसा है, जैसा सिद्ध भगवान का है, जैसा अरियंतों का है, तो वो स्वभाव का हमें एहसास करना है। स्वभाव का हम पहले आगम के द्वारा ज्ञान करेंगे, निर्णय करेंगे और फिर उस सम्मुख हो गए तो धर्म की शुरुआत होगी, जो अत्यंत स्वाधीन चीज है। पर में हमारा कुछ नहीं चलता है फिर भी रात दिन उसके पीछे माथा मारते हैं, परंतु स्वभाव तो हमारी चीज प्रत्यक्ष विद्यमान है और ज्ञान की पर्याय हमारे पास है, बस इधर लगाया है, हमारा इतना सा अल्प ज्ञान है लगाया है अनंतों में, और भगवान के पास अनंत ज्ञान है वो लगाया है एक में, वो जो सूर्य की किरणें भी हैं वो तो इसमें कांच में से इसे करते हैं मैग्नीफाइंग में से, तो इकट्ठी होती तो कागज भी जलता है। तो ऐसे हमारी जो ज्ञान है वर्तमान ज्ञान की पर्याय स्वभाव में लगाएंगे तो यहाँ से केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, कहीं बाहर से तो आने वाला नहीं है। इस तरह से ये जो स्वभाव हमारा धर्म है, जो वितरागता ये हमारा धर्म है, ये हमारा स्वभाव है, वो वितरागता का यहाँ 10 प्रकार के लक्षणों द्वारा कथन है। और ये 10 लक्षण हम ये 10 दिन में एक एक लक्षण, परंतु हमें पूर्ण वितरागता वो कई 10 प्रकार के अलग अलग धर्म है ही नहीं है। वो श्वास में उसको 10 धर्म भी कहते हैं, कहना अलग बात है, और उसकी मूल बात हमको समझना चाहिए। इस तरह से अभी तो हमारा समय हो गया है, हम यही रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की।
पेन चालू है।